आर्यांश अपने फ्रेंड श्रेष्ठ के घर पर आया हुआ था। उसका मूड सही करने के लिए श्रेष्ठ ने एक प्राइवेट पार्टी रखी थी, लेकिन आर्यांश को शोरगुल पसंद नहीं था। इस वजह से पार्टी से दूर आर्यांश और श्रेष्ठ ऊपर टेरेस पर बैठकर बातें कर रहे थे। पहले श्रेष्ठ ने आर्यांश को आगे बढ़ने की सीख दी, तो बाद में वो उसे गोयनका इंडस्ट्रीज के बारे में बताने लगा। अचानक श्रेष्ठ के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली जिसे सुनकर आर्यांश को गुस्सा आ गया। श्रेष्ठ ने न जाने कहां से पता लगाया था कि दीवा रक्षित से मिलने के लिए जेल में गई थी और वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। ये सब सुनने के बाद आर्यांश का गुस्सा बेकाबू हो गया। वो वहां से उठकर जाने लगा। तभी पीछे से श्रेष्ठ ने तेज आवाज में कहा, अरे कहां जा रहा है? अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं। बहुत सारी बातें बाकी हैं। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम ही खाओ, आर्यांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा और फिर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। अब इसे क्या हो गया? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो इसका मूड खराब हो गया? कहीं फिर से ये इस बात से तो नाराज नहीं हो गया कि मैंने इसके मरे हुए प्यार को फिर से याद दिला दिया? इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, श्रेष्ठ ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। वो आर्यांश के पीछे जाने के बजाय वहीं पर लेटा रहा। वहीं उससे अलग आर्यांश इस वक्त गाड़ी में था और काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसके कानों में श्रेष्ठ की कही हुई बातें गूंज रही थीं। तो तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और उसके गले लगकर रो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को टच करने की? आर्यांश गुस्से में तेज सांस लेते हुए बोला। आर्यांश वापस आ चुका है। इस बात से अनजान दीवा टीवी देख रही थी। आर्यांश के आसपास ना होने पर वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। इस वक्त टीवी पर एक कॉमेडी शो चल रहा था। उसे देखते हुए दीवा के चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। सुमन दीवा के लिए दूध लेकर आ रही थी कि इस बीच घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। इसी के साथ सुमन के कदम बाहर की तरफ बढ़ने लगे। उसने देखा आर्यांश गाड़ी से बाहर निकलकर तेज कदमों से चलते हुए अंदर आ रहा था। आर्यांश पहले लंबा रुकने वाला था, लेकिन अब वो टाइम पर अपना काम निपटाकर आ चुका था। उसे वहां देखकर सुमन ने मुस्कुराकर कहा, अरे मिस्टर कपूर, आप जल्दी आ गए। बता देते तो मैं आपके हिसाब से खाना तैयार रखती। आर्यांश ने सुमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंदर बढ़ने लगा। उसके चेहरे के भाव देखकर सुमन समझ रही थी कि आर्यांश इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। लिविंग रूम की लाइट डिम थी। अचानक टीवी के सामने आर्यांश आकर खड़ा हो गया था। उसे इस तरह अपने सामने देखकर दीवा भी हड़बड़ाकर जल्दी से खड़ी हो गई। आर्यांश, दीवा ने घबराकर आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा और लाइट्स फुल की। वो कोई बेवकूफ नहीं थी जो आर्यांश के चेहरे के भाव देखकर समझ ना पाए कि वो कितना ज्यादा गुस्से में है। आर्यांश ने अपने हाथ बांधे और सर्द आवाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें याद है कि मुझे मेरे नाम से बुलाना होता है? बैकग्राउंड में टीवी के होस्ट के हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां का माहौल इस वक्त काफी डरावना था। दीवा की इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि वो कुछ पूछ सके। वो मैं, दीवा अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रही थी कि तभी आर्यांश बोला, मेरे पीछे आओ। दीवा डर से कांपने लगी थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा आखिर आर्यांश इतना गुस्सा क्यों है। दीवा बस चुपचाप उसके पीछे कमरे में जाने लगी। जाते वक्त उसकी नजर सुमन पर पड़ी जो लाचारी से उसे देख रही थी। ऊपर जाने पर कमरे के बंद होने की तेज आवाज आई। दीवा नजरें झुकाकर खड़ी थी। उसे आर्यांश के बोलने का इंतजार था। आर्यांश दीवा की तरफ सख्त निगाहों से देखते हुए बोला, जब मैं यहां नहीं था तब तुम किसी से मिलने के लिए गई थी? बोलते हुए आर्यांश ने दीवा को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए दीवार से लगा दिया था। मैं किसी से नहीं मिली थी, दीवा ने कांपती आवाज में कहा। झूठ बोल रही हो तुम, आर्यांश तेज आवाज में बोला, जिस पर दीवा डर के मारे चौंक गई थी। दीवा की नजरें झुकी हुई थी तो आर्यांश ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, मुझे सच सुनना है, मैं सच ही बोल रही हूं, मैं किसी से नहीं मिली थी, दीवा ने डरते हुए जवाब दिया। आर्यांश ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करके कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, सच बताओ कि मेरे पीछे तुम किसी से मिलने गई थी? मैं बस तुम्हारे कजिन से मिली थी, दीवा ने कहा। वो डर के मारे कांप रही थी। तुमने मुझे इस बारे में बताया था, आर्यांश बोला। उसके अलावा मैं किसी से नहीं मिली थी, दीवा ने सिसकते हुए कहा। तो तुम्हारा जवाब यही है, सच में तुम्हें कुछ नहीं बताना, आर्यांश ने एक बार और पूछा, जिस पर दीवा ने नामे सिर हिला दिया था। आर्यांश ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और उसकी तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, मुझे बताओ दीवा गोयनका, तुम डिटेंशन सेंटर में किससे मिलने गई थी? वो मैं रक्षित से मिलने के लिए गई थी, दीवा ने बहुत मुश्किल से जवाब दिया। आर्यांश ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बांध दी थी। वो दीवा की तरफ देखकर बोला, और ये रक्षित कौन है? तुम अच्छे से जानते हो रक्षित कौन है, दीवा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर के मारे आंसू आ गए थे। अपना ये ड्रामा और मासूमियत अपने उसी बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखो, मेरे आगे ये आंसू किसी काम नहीं आएंगे, आर्यांश ने सर्द आवाज में कहा। जब तुम्हें सब पता है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दीवा ने आर्यांश की तरफ देखकर नम आंखों से कहा। इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि पता चले कि तुम मेरे साथ कितनी ईमानदारी के साथ हो। बहुत याद आ रही है तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की? कहो तो उसी के पास जेल में भिजवा देता हूँ, आर्यांश ने कहा। दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। आर्यांश ने तेज आवाज में कहा, मुझे सख्त नफरत होती है जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है और आप चुपचाप मासूम बनने का दिखावा करते हो। अपनी बात खत्म करके आर्यांश दीवा के करीब आया और उसे बेड पर धकेल दिया था। दीवा उसके इरादे समझ पा रही थी, लेकिन इतने गुस्से में अगर आर्यांश उसके करीब आता तो सच में वो रात उसके लिए काफी दर्दनाक साबित होने वाली थी। आर्यांश अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। दीवा ने आर्यांश को समझाते हुए कहा, तुम अभी गुस्से में हो, हम कल बात करते हैं, मुझे कल कुछ नहीं करना है, जो होगा अभी होगा, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने दीवा के चेहरे की तरफ देखा तो वो कुछ पल रुक कर बोला, तो तुम मना कर रही हो? तुम जानती हो ना हमारे बीच में क्या डील हुई थी? मैं मना नहीं कर रही हूँ, दीवा ने जवाब दिया। तो फिर आगे कोई सवाल नहीं रह जाता है, मैंने तुम्हें सच बोलने का मौका दिया था और झूठ बोलकर तुमने अपने लिए मुसीबतें बढ़ा ली हैं मिस कोइंका, आर्यांश बोला। और अगले ही पल वो उसके ऊपर था। एक एक करके दीवा के कपड़े उतरने लगे थे और जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था आज की रात सच में उसके लिए काफी मुश्किल साबित हुई थी। आर्यांश गुस्से में था और दीवा के झूठ ने उसके गुस्से को बढ़ा दिया था। इसका अंजाम अब दीवा को ही भुगतना पड़ रहा था। इससे अच्छा तो मुझे मार क्यों नहीं देते, दीवा ने रोते हुए कहा। उसके लिए अब तक बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो जानती थी कि आर्यांश उसे जानबूझकर सजा दे रहा है। मार भी सकता हूं अगर तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुमसे पहले तुम्हारी पूरी फैमिली को मारूंगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने किसे धोखा दिया, आर्यांश हांफते हुए बोला। मैं बस बात करने गई थी, दीवा ने कराहते हुए अपनी सफाई में कहा। अच्छा तो तुम किसी से बात करना चाहती हो तो उसके गले लगकर रोने लग जाती हो क्या, आर्यांश सार्कास्टिकली बोला। इमोशनल ब्रेकडाउन किसी का भी हो सकता है, मैं अपने होश में नहीं थी, दीवा ने कहा।
अच्छी बात है, मुझे नफरत है जब तुम किसी और के करीब जाती हो, ऊपर से तुम उसके गले लगकर रो रही थी, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखने, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, आर्यांश गुस्से में तेज आवाज में बोला। उसका गुस्सा सिर्फ बातों से ही जाहिर नहीं हो रहा था। अचानक दीवा जोर से चिल्लाई तो आर्यांश ने उसे छोड़ दिया था। आर्यांश ने उसे चुप कराने के लिए उसके करीब आना चाहा, लेकिन दीवा ने उसे खुद से दूर धकेल दिया था। ये परवाह दिखाने का दिखावा मत करो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, अगर होती तो, दीवा गुस्से में बोल रही थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यांश ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। आर्यांश ने दीवा के होठों को चूमा और पागलों की तरह किस करने लगा। दीवा ने एक बार फिर उसके होठों को काटने का सोचा। ये ख्याल उसके दिमाग में आया ही था कि तभी एक पल के लिए आर्यांश उससे अलग हुआ और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, जो सोच रही हो वो करने की गलती मत करना। दीवा हड़बड़ा गई, उसके बिना कुछ बोले ही आर्यांश उसके अगले मूव के बारे में समझ गया था। दीवा को एक पल के लिए लगा आर्यांश उसे छोड़ देगा, लेकिन वो गलतफहमी थी। दीवा ने अपने एक झूठ की कीमत उस पूरी रात चुकाई।